र ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा दिनांक 1 अगस्त 1992 को प्रातः लगभग 8:30 बजे श्री राम द्वारा मथाने में हुआ।
पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण।
थोड़ी गीता सुना दे, पीछे प्रश्न आया उसको उत्तर दे। गीता का पहला अध्याय पूरा हुआ है, उसके बाद दूसरा अध्याय चला है। अपने तीसरा अध्याय पूरा हुआ है, उसके बाद दूसरा अध्याय चला है। फर्क है। तो तीसरा अध्याय में प्रश्न किया था दूसरे अध्याय का। दूसरे अध्याय का 49-48 श्लोक है, उन श्लोकों पर प्रश्न था। तीसरे अध्याय में ध्याय शिक्षित कर्मणस्ते मसा बुद्धि देना। खास बात थी कि आपके मत में बुद्धि श्रेष्ठ है तो मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? तो कर्म किए बिना कोई रहता नहीं, कर्म जरूर करना चाहिए। मानो भोजन भी करना पड़ेगा, स्वस्नान भी करना पड़ेगा, संसार की सेवा भी करना पड़ेगा, गृहस्थ का काम भी करना पड़ेगा और अभिजुद्ध भी करना पड़ेगा। तो करने से जी नहीं छोड़ना है, काम ठीक तरह से करना है। स्वार्थ का, अभिमान का, आसक्ति का त्याग कर, फलेच्छा का त्याग कर काम करो। काम तो करो पर फल की चाहना मत रखो। खास बात यह है, ये करूंगा मेरे को ये मिलेगा, ये करूंगा ये मिलेगा, तो वो मिलने के लिए कर्म किया जाता है। वो व्यापार की तरह चलता रहता, बंद नहीं होता, चलता ही रहेगा अनादिकाल से अनंत काल तक। तो दो बात है, ये करने की एक धुन है, एक पाने की धुन है। ये दो धुन लगी हुई है मनुष्यों के भीतर में। आप साहब ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, वो पढ़ूं वो पढ़ूं, वहां जाऊं वहां जाऊं वहां जाऊं, वो तीर्थ करूं वो व्रत करूं वो शुरू में करूं, ये करने की धुन है। और ये जान जाऊं ये जान जाऊं, ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसे मिल जाए मेरे को ऐसे मिल जाए, ये तो मिलने की इच्छा का तो त्याग करो और कर्तव्य कर्म करो करने के वेग सूच दूर करने के लिए, और फल की इच्छा का त्याग करने के लिए करो। काम का वेग है। इस वास्ते छठे अध्याय में आरूढ़ोर मुनेर योगम कर्म कारण मुचते, योग में आरूढ़ होने के लिए कर्म में भी कारण है। तो योगारूढ़ होने के लिए करो। योगारूढ़ होता है यदा इंद्रिया न कर्म अनुसद्ध से, न तो फल की इच्छा रहे, न कर्म में आसक्ति रहे, न फल में आसक्ति रहे, ये दोनों उजियार, और अपना कोई संकल्प नहीं कोई इच्छा नहीं, ये तीन बात होती है तो वो योगारूढ़ होता है। योगारूढ़ होने के लिए अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करो। उद्देश्य यह है कि फल की इच्छा नहीं रखना है, करने का वेग निकाल देना। वेग तो पाने के लिए काम करेगा तो वेग निकले नहीं, अनंत जन्मों तक करते रहो वेग मिटेगा नहीं। फल की इच्छा नहीं, दूसरों का हित हो, दूसरों की सेवा करो, तो सेवा करने से करने का वेग निकल जाएगा, फिर करने की मन में नहीं जाएगी, और पाना कुछ है नहीं, लेना है नहीं, सेवा करनी लेना नहीं है, तो दोनों मर जाएगी तो योग अरूढ़ हो जाएगा। तो ऐसा तीसरे अध्याय में इन पर विशेष जोर दिया और इनके जानने की विशेष बातें चौथे अध्याय में कही। तो पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा कि महाराज ये युद्ध है तो करना ये तो ठीक नहीं है, इससे बड़ा पाप हो जाएगा। तो अर्जुन को भगवान ने कहा तुम युद्ध कर। पहले कहा कि मेरे को सेना दिखाओ, तो भगवान ने सेना दिखाई। देखने पर देख लो मन हुआ तो दुख हुआ, तो उसमें वो कहता है कि मेरे को दुख होता है महाराज, मैं क्या करूं। वो बात है दूसरा अध्याय यहाँ से चलता है। तो दूसरे अध्याय में 1-10 तक तो अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण संवाद है, और फिर 11-30 तक 20 श्लोकों में सांख्य योग का विषय में है, और 31-38 तक छात्र धर्म के अनुसार करने की आवश्यकता का वर्णन है, और फिर 39-53 तक निष्काम भाव से कर्म योग का विषय है, और 54-72 तक श्री प्रज्ञ के लक्षण है। ये इसमें प्रधान विषय है। तो पहले तक पहले से लेकर पहला श्लोक है इससे लेकर 10 तक अर्जुन की कायरता के विषय में कृष्ण अर्जुन संवाद है। तो पहले अर्जुन का कायरता के विषय में ही बोलना है। तो पहले संजय कहते हैं, धृतराष्ट्र और संजय का संवाद है, कृष्ण भगवान का अर्जुन का संवाद है, और भीष्म पायन और जन्मेजय का संवाद है। महाभारत की कथा वे याद आ गई आपको बता दें। पांडव थे, पांडव में अर्जुन का लड़का था अभिमन्यु, उसके हुआ परीक्षित, परीक्षित के हुआ जन्मेजय। जन्मेजय के कोड निकल आई थी, उस कोड के दूर करने के लिए महाभारत की कथा सुनी। तो कोड 18 प्रकार का होता है, तो 18 पर्व सुने उसने। 18 पर्व है, 1,25,000,000 श्लोक है उसके, इतना बड़ा महाभारत है मोटा। तो वो कथा सुनी, तो वो कथा है कह रहे हैं वैशंपायन ऋषि और जन्मेजय सुन रहे हैं, जिसमें संबंध जन्मेजय का और विषमपायन का संवाद है। उसमें गीता में संवाद कृष्ण और अर्जुन का है, तो ये सुना है कृष्ण भगवान से अर्जुन ने, पर ये संवाद की बात है वो है धृतराष्ट्र और संजय। धृतराष्ट्र पूछता है, संजय कहता है। तो जन्मेजय वो विषमपायन का संवाद, उसमें धृतराष्ट्र और संजय का संवाद, उसमें अर्जुन और कृष्ण भगवान का संवाद, ये 3 संवाद है। तो अब विषमपायन के वो संवाद पीछे पहले अध्याय में आ सकते हैं, बस याद है तो बताएंगे। यह संजय कहता है कि अर्जुन को जब शोक हो गया, दोनों सेनाओं को देखा, तो दोनों सेना के अपने ही अपने भाई बंधु कुटुंबी, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई बेटा है, कोई दादा है, कोई परदादा है। वाल्मीकि थे, वाल्मीकि वो भीष्म जी महाराज के भी चाचा लगते थे, तो भीष्म जी दादा थे, वो परदादा थे। और धृतराष्ट्र वो पंडू ये पिता थे, और उसके पंडू के पांडव 5 बेटा थे। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 बेटा थे, 101 बेटा थे। इसलिए ये कौरव है, ये कुरु कहलाते, ऐसे कुरुवंशी दोनों है, परंतु पांडव अलग कर देने से उनको कुरुवंशी कहा, नहीं तो कुरुवंशी पांडव भी कुरुवंशी है, ये भी कुरुवंशी है, दोनों कुरुवंशी। तो 2 विभाग है उसमें, पांडव और धृतराष्ट्र ऐसा कहा जाए तो ठीक है। तो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि के इस अर्जुन है। अब जब दोनों सेनाएं खड़ी हुई, तो अर्जुन ने कह रहा महाराज दोनों सेनाओं के बीच में रथ का खड़ा करो, मैं देखूं। ये पहले अध्याय में बात आई है। तो पहला दिन बाद भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया। तो बीच में का मतलब यहाँ दोनों खड़ी है जहाँ से वार हो सके अच्छी तरह उसका प्रहार कर सके ऐसे बीच का ये भाग होता है और ये भाग इधर भी बीच का होता है इधर इधर इनके बीच का भाग ये यहाँ रथ खड़ा किया और देखने को कहा। तो देखा तो अपनी सेना के तो अपने थे ही पर उन सेनाओं के लिए तो भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया रथ को खड़ा कर किया कि जैसे भीष्म जी महाराज द्रोण से आगे दिखे ऐसे भीष्म द्रोण प्रमुख था सर्वेशान से मैं इच्छित हूँ। तो भीष्म और द्रोण को देखा तो अर्जुन का भाव बदल गया। दो पूजनीय होते हैं दो गुरु होते हैं एक तो वंश परंपरा से पूजनीय होते हैं एक विद्या परंपरा से पूजनीय होते हैं। तो भीष्म महाराज तो वंश परंपरा से आदरणीय दादाजी थे और द्रोणाचार्य है ये विद्या देने वाले पूजनीय थे। तो विद्या संबंध योनि संबंध दो संबंध होते हैं दोनों संबंधों के पूज्य उनके सामने खड़ा किया। तो ये भगवान की चतुराई है जैसे गीता कहनी थी भगवान ने वो कहनी थी इस वास्ते उनके सामने खड़ा किया युद्ध कर रहा है। इसने तो कहा कहीं में ऐसा वो बात पहला जाया तो बताएंगे आपको। इसे जोर से कहा कौन मेरे साथ में जो हाथ करने वाला है जरा इन्हें देखूं तो सही दुर्योधन की सहायता करने के लिए आए हैं युद्ध करना चाहते हैं तो मैं तो बताऊं कि युद्ध कैसे होता। बड़ी जोश बड़ी देख लू ठीक तरह से भले मानसों को जो युद्ध की तैयारी कर रहे उतावले हो रहे हैं इतना जोर से देखा तो कुटुंबी उधर कुटुंबी इधर कुटुंबी तो युद्ध में तो कुटुंबी कुटुंब मारा जाएगा हमारे पक्ष मरेगा तो कुटुंबी उधर कर तो कुटुंबी कुटुंबी को नाश करना महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे सब अस्त्र सब छोड़ करके चुप और बैठ गया। वो बैठ गया चुप तब भगवान बोले तो संजय कहता है तन तथा कृपया विष्टम अष्टपूर्णा कुलेक्षणम वैसी कृपा कायरता आ गई आंखों में आंसू आ गए जिससे दीखना कम हो गया आंसू भर गए आंखों में और विषाद का दुख कर रहा है। ये वचन मधुसूदन से मधुसूदन बोले भगवान बोले ऐसी कायरता देख करके दो श्लोक भगवान के हैं कुछ स्वागत में लगभग अरे ये कायरता तेरी कहां से आ गई विष्णु सुकृष्ण युद्ध के समय अरे क्षत्रिय के लिए कायरता बड़ी खराब बात है अनादि सुष्टम श्रेष्ठ पुरुष इस कायरता वो कभी नहीं रहते अस्वर्गीय ये स्वर्ग देने वाली नहीं है और मुक्ति देने वाली भी नहीं है इस लोक में ठीक नहीं स्वर्ग में ठीक मुक्ति मुक्ति तीनों में कोई सह नहीं मिलता ये कायरता तेरे कहां से आई। अरे अर्जुन जो मास मरे इस हमें इंदिरा बन को छोड़ नपुंसक हो रहा है इंदिरा कहीं पे मास वहां पर तुम्हारे जैसे सूरवीर के लिए कायरता उचित नहीं है हृदय दुर्बलता को छोड़ करके खड़ा हो गया ये भगवान ने कहा। अब ये कहा तो अर्जुन में तेजी यही थोड़ी महाराज कथम भीष्म संख्य द्रोण से मधुसूदन महाराज मधुसूदन आप दैत्य को मारने वाले हो और दूसरा संत अरिसूदन आप बैरियों को मारने वाले हो ये ना तो है बैरी और ना है दुष्ट सज्जन में श्रेष्ठ सज्जन है हमारे भीष्म और द्रोण और बैरी नहीं है भीष्म जी हमारे पिता माँ दादाजी है द्रोण हमारे गुरु है। तो कथम भीष्म मानु संख्य द्रोण से युद्ध में भीष्म और द्रोण को मैं कैसे मारू ये तो मारा इसको भी मतलब बाणों से बाण को प्राण देने वाली युद्ध होता है तो बाणी से कैसे मारू ये अगर मारपीट करे तो ये हाथ जोड़ना चाहिए गुरु है दादाजी है ये तो पूजा सूजन महाराज पूजन करें पूजन आरती करें जैसे है उनको मनुष्य रहूं मैं ये कैसे हो सकता है। फिर सुनो गुरु नहत्वा ही महान भावान श्रेयो भोगतुम भेक्षम भी है लोके हित्वा से कामांश गुरु ने भोगान रुद्र प्रतिधान अब दो बात आ गई, युद्ध की तैयारी थी वो बात आई मेरे मन में नहीं करने की, तो दोनों बातें मेरी मेरी सुन लो दोनों बातें। भगवान को साफ सुनाता है, इन गुरुओं को जनों को मैं न मारू महान भावों को, तो फिर ये बात होगी कि राज नहीं मिलेगा, निर्वाह कैसे करेगा तू। कहते मैं भीख मांग कर खा लूंगा अपने गुरुजनों को नहीं मारूंगा। भीख मांगना सबसे नीचा काम होता है क्षत्रिय के लिए, क्षत्रिय के लिए मांगना नहीं है, ब्राह्मण शास्त्र इनके लिए मांगना होता है, पर क्षत्रिय कभी मांगे नहीं। तो मैं भीख मांग खा लूंगा और इनको मारूं तो क्या मिलेगा, भोग मिलेगा, राज्य मिलेगा। वो कैसा है कि रुद्र प्रतीक धाम खुदू से स्ना स्ना सब का हत्या करके अरे जितने पदार्थ मेरे लहू लुहान हुए होंगे, क्योंकि खून बिखेर देगा इस बार पशु कुछ भोग मिले, ऐसा मैं भोगना नहीं चाहता। मैं अर्जुन कह तो दी बात सीधी अपने मन में आई, जैसी विचार किया कि अब मैं जानता हूं भगवान नहीं जानते हैं क्या। तो सुनो महाराज मेरी प्रार्थना, युद्ध करने में करना युद्ध ठीक है कि न करना यही मेरे को पता नहीं है, और युद्ध करने में भी ठीक है तो जीत मेरी होगी इनको होगी इसका कुछ पता नहीं। कोई हत्या ही कर बैठे तो हार भी जाने फायदा क्या होगा, लोग बड़ा दोनों बिगड़े। जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते, धृतराष्ट्र से संबंधित जितने हैं इनके मारने पर घरों को मार कर कोई जीना चाहता है, आपने शोक चिंता होगी मरो तो उसे मरना अच्छा है। जिनको मार कर हम नहीं चाहते जीना, वही तो सामने धृतराष्ट्र संबंधी सामने खड़े हैं। अब दो दुविधा है, युद्ध करना कि नहीं करना, करना जीत पता नहीं तो युद्ध करना नहीं, संदेह हुआ। अब संदेह हुआ तो भगवान ने कहा खड़ा हो जाए तुम कायल क्यों बैठा है, तो एक मास तो उसे खड़ा हो। तो कहते हैं महाराज अब बड़ी मुश्किल होगी, आप तो कहते हैं युद्ध करने के लिए और मेरा युद्ध नहीं करने का विचार है, अब दोनों में कौन सा काम ठीक है। तो हमें प्रार्थना करता है कि कायरता के दोष से मेरा स्वभाव उमत हो गया, मेरा स्वभाव था काहू तो न निबड़ते थे, जूता दे भी रणा दे भी रण के सामने आ जाए युद्ध के सामने और खड़ा हो जाए तो ऐसे कोई कह दे तो क्षत्रिय से टुकड़ा टुकड़ा हो जाए फिर विमुख नहीं होता, ऐसा मेरा स्वभाव है। परंतु आज तो मेरा स्वभाव बिगड़ गया, आज तो कायरता आ गई है। और धर्म क्या है, युद्ध करना है कि त्याग करना है, वो निर्णय में कर नहीं सकता। अब जो ये जो कल्याणकारी बात वो मेरे कहिए, मैं आपका चेला हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए। यहाँ से बात चली, उपदेश की बात यहाँ से चली, इससे पहले उपदेश की बात है ही नहीं, सब जुदरी जुदरी बात है। तो वो उपदेश की बात कहता है कि महाराज मेरे को क्या करना चाहिए ये बात बताओ, जो कल्याण निश्चित कल्याण। ये गीता का उपदेश कैसे दिया, हरेक शंका कर सकता है कि युद्ध का मौका था और युद्ध में ही तैयार हो गया, युद्ध के मौका भी आ गया, फिर गीता कैसे चली, उपदेश कैसे हुआ यहाँ। तो उपदेश जैसे हुए कायर होकर युद्ध नहीं करना चाहते थे, भगवान ने युद्ध करने का कह दिया, तो अर्जुन विचार किया कि पाप ही पाप लगेगा, तो महाराज पाप नहीं लगेगा कल्याण हो जाए ऐसी बात बताओ, हमें मुश्किल होगी। क्योंकि युद्ध करने से करना चाहिए तो क्षत्रिय के लिए तो युद्ध करना कर्तव्य, कुटुंबियों को मारना अकर्तव्य, अब दोनों में मैं क्या करूं, मुश्किल हो गई। कुटुंब मरेगा इधर तो कुटुंब को मारना नहीं चाहिए, वो बड़ा पापी है जो कुल का नाश करता है, और क्षत्रिय होते हुए रण के उससे विमुख होना बड़ा भारी पाप है, तो मैं क्या करूं। तो इस वास्ते आपके शरण मेरे को शिक्षा दीजिए, क्या करूं मैं। आप कहो कि तुम युद्ध कर फिर ठीक हो जाएगा, तो अर्जुन कहता है महाराज इंद्रियों सुखा रही, मेरे शोक चिंता आ रही है, ये मैं पृथ्वी का राज्य मिल जाए, ये तो क्या है देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा ये शोक दूर नहीं होगा, युद्ध करने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा राज मिल जाएगा, मेरे राज्य से शोक दूर नहीं होगा। एक मुक्त वाली जी के संगुड़ा के ऐसे कह करके मैं योजे मैं युद्ध नहीं करूंगा बाबा, ये मेरे से हत्या नहीं होगी, दुख मांगल खा लूंगा, निशंजूंगा तो मैं कर लूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कर चुप हो गया। ऐसे देखा तो अर्जुन भगवान बोलते तुम वहां से ऋषि संदेह कहता है एवं मुक्त ऋषि के ऐसा गुण प्रसन्न है प्रसन्न है तुम वहां से ऋषि कैसे उनसे भगवान बोले हंसते हुए सेवियों रूपियों मध्य विद्वानों सेनाओं के बीच में विषाद करते दुख करते हुए भगवान बोले श्री भगवान वहां से तो भगवान कैसे बोले प्रसन्न हो हंसता हुआ मुस्कुरा कर बोले अर्जुन तो घबरा रहा है पाप से और भगवान को हंसी छूट रही है मुस्कुरा के बोले तो हंसी किस बात को देख रहा है कि अभी तो तू कहता है कि आपके शरण हूँ शिक्षा दीजिए मेरे को निर्णय नहीं कर रहे मेरे बोले बिना ही युद्ध नहीं करूंगा क्या कैसे बात करता है पागल की तरह आप शिक्षा दो जो मैं काम करूं युद्ध करूंगा नहीं तो मेरे को हल चलाना है खेती करानी है क्या कहूं मैं युद्ध से इनकार करता है। इस बात से भगवान को हंसी आ गई कि बच्चों से बात करता है शिक्षा दो मेरे को तो पहले निर्णय कर युद्ध नहीं करूंगा हंसते हुए बोले भगवान प्रशासन ने हंसते हुए बोले अशोक आनंद नहीं शोक करने के लिए तो शोक करता है और पंडित की बातें बगाड़ता है पंडित होते वो मर जाए उनके लिए जीते उनके लिए चिंता नहीं किया करते हैं मरे हुए की चिंता भी नहीं करते और जीते की भी चिंता नहीं करते कोई के जीते की चिंता कौन करते हैं अरे जीते की चिंता ही रहती है हरदम मरने वाले एक बार रो लो बस वही बात है पर जीता तो उम्र भर वाली चिंता होगी खाने की पीने की कपड़े की रहने की ब्याह की शादी की सूरज सूर्य की जीते होने की चिंता ज्यादा होती है पंडित वो मर गए उनकी चिंता नहीं करते जीते हुए भी चिंता नहीं करते क्यों नहीं करते चिंता किसे को भगवान कहते हैं देख तू कभी नहीं था ये बात नहीं और मैं नहीं था ये बात नहीं और ये राजा लोग नहीं रहेंगे ये बात नहीं और अगर भी नहीं रहे तू मैं नहीं रहूंगा ये बात नहीं है तू भी पहले था मैं भी पहले था राजा लोग भी पहले थे ये अभाव थोड़ा ही होता है जैसे मान तो क्या होता है कि इस देह में जैसे कुमार अवस्था होती है जवान अवस्था होती है वृद्धावस्था होती है तो छोटे से जवान हुआ बूढ़ा हुआ मरा फिर बालक हो गया ये तो कपड़ा बदलने के लिए होता ही रहता है इसमें क्या मोह करता है जो पंडित होते हैं मोहित नहीं हो रहे तू मोहित हो रहा है बात तो पंडित ही बघाड़ता और ये संसार के जो संयोग भी हो गए संसार की उत्पत्ति नाश ये तो ये मात्रा स्पष्ट कौन से शीतोर से सुख दुख अनुकूल प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले शीत मान ठंडक अनुकूलता उस नाम प्रतिकूलता इनमें सुख दुख होता है ये तो आने जाने वाले रहने वाले ना सुख रहने वाला है ना दुख रहने वाला है इनको तो सह जाना चाहिए सुख दुख अपने कर्तव्य बेटे करके इनको सह जाना क्या होगा हमारे सहने से कि जिसको ये नहीं व्यथा पहुंचाते किसको जिसके सुख दुख समान है सुख आ जाए दुख आ जाए चल जाएगा ऐसे वो अमर हो जाता है तू कल्याण चाहता है तो कल्याण तो इस बात से होगा तो फिर सुनो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत असत भावन विद्यते असत जो नाशवान पदार्थ है उनकी सत्ता विद्यमान नहीं है ना भाव विद्यते सत सत का अभाव नहीं हो सकता उपयोग विशिष्टी भी अविनाशी अविनाशी है विनाशी विनाशी है संसार अविनाशी है और आत्मा अविनाशी है संसार विनाशी है उनके तत्वदर्शी ने अनुभव किया ये संसार से व्याप्त से वो अविनाशी है इस अविनाशी का कोई नाश कर नहीं सकता और अंत वंत ही में दिया ये सब देह जितने दिए सब अंत वाले हैं अंत वाले हैं अंत वाले इसे तो अंत हो गएगा ही नित्य अविनाशी आत्मा के शरीर सब नाशवान है इस में जो कोई कहता है कि ये मार दिया, ये मर गया, ये दोनों नहीं जानते। शरीर मार दिया और मर गया, आत्मा है ही नहीं। आत्मा न मारने वाला है, न मरने वाला है, नित्य रहने वाला है। और शरीर सदा ही अनित्य है, नष्ट होने वाला ही है। चिंता की बात कौन सी है ने? आत्मा कैसा है? कैसे ये मरने मारने वाला नहीं है। न जाते मेरे देवा कदाचित, ये कभी न पैदा होता है न कभी मरता है, न होकर के होने वाला है। संसार तो उत्पन्न होकर होता है, बच्चा पैदा हुआ अब है तो वो होकर होने वाला है। ये होकर होने वाला नहीं, निरंतर रहने वाला है। अज है, नित्य है, अशाश्व निरंतर रहने वाला है, अनादिकाल से चला आता है। अन्य माने शरीर न अन्य थे, शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश होता नहीं, तो चिंता किस बात है? इसलिए सोचते जो जानता है अज अविनाशी, वो कैसे किसी घात करे और किसी घात करे, कैसे मारे और कैसे किसी द्वारा नाश करवावे, तो ये क्या है? तो भगवान कहते हैं जैसे कपड़ा है पुराना छोड़ कर नया कपड़ा पहन लेता है, ऐसे पुराने शरीर छोड़ करके ये देही नए शरीर धारण करता है। परमात्मा है वो तो वैसे वैसे रहता है। इसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और पवन इसका शोषण नहीं कर सकते। ये चारों भूत भी इसमें कुछ काम नहीं कर सकते। अच्छेद्य है, अदाय है, अक्रेद्य है, अशोच्य है, नित्य है, सब जगह व्यापक है, सदाचल है, सनातन है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है, तस्मात एवं विदित्व, ऐसा देकर के शोष नहीं करना चाहिए। तुम कहते शोक मेरा दूर, शोक की बात ही नहीं है। ये तो मरता नहीं और शरीर जीता रहता नहीं, तो जीव तो मरेगा, शोक से क्या फायदा? और जीव अमर ही रहेगा, क्या शोक का? बिल्कुल शोक करना ये मूर्खता की बात है। ना शोक शरीर की दृष्टि से हो सकता है और ना शोक आत्मा की दृष्टि से। तस्मात एवं विदित्व नाम शोषित, शोक भी करना चाहिए। अब तुम कहता है नहीं महाराज, ये तो नित्य पैदा जन्मता मरता, जन्मता मरता रहता है। अगर ऐसा भी माने, ये बात सिद्धांत की नहीं है, सिद्धांत की तो यही है कि न मरता है जीता है, पर ऐसा माने कि नित्य पैदा होता है, नित्य जन्मता मरता ही रहता है, तो भी शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? इस सिद्धांत के मान से जाने पैदा हुआ उसको मरेगा, अगर मर गया उसका जन्म होगा, तो ये जन्म न मरना तो अपरिहार्य, इसको दूर कर नहीं सकता, तो शोक की इसमें बात कौन सी है? और देख बात क्या है, अभ्यक्तादीनी भूतानी, ये प्राणी पहले नहीं थे, बीच बीच में दिख गए, अंत में नहीं रहेंगे, इसमें शोक की चिंता की बात कौन सी हो सकती? ये सब आदर्श आदापति का पहले नहीं थे, इसे आगे और इसे आज से 100 वर्ष पहले ये जितने बैठे कोई नहीं था, और 100 वर्ष के बाद जयराम जी कोई नहीं रहेगा, ये तो ऐसा होता है। इसमें बिलाप की बात ही कौन सी है? कहा कोई देव किसी महाराज, शोक तो होता है तो मूर्खता है, इन शोक की बात कौन सी है? आश्चर्य मजा मैं शोक हो रहा है कि देख ये जो आत्म ज्ञान है, आत्मा नित्य ज्ञान, ये कठिन है। कोई एक इस तत्व को जानता है और ऐसे ही उनको जानकर भी कहने वाला कोई एक ही होता है, और वो कोई एक ही इसको सुनता है, पर तो सुनकर के नहीं जानता, सुनकर के भी आत्मा का ज्ञान नहीं होता। खूब सुने तो भी सुनने से ज्ञान किसी को नहीं हुआ, और देह ही नित्य, ये तो आत्मा की बता रहे, देह ही नित्यमय हो, देह वाला जो आत्मा है नित्य ही अवध्य है, कभी मरता ही नहीं, सबके बीच में रहने वाला सही। इस वास्ते किसी प्राणी के लिए कभी भी शोक करना उचित भी नहीं है, ये आत्मज्ञान दी है। अब आत्मज्ञान दे करके भगवान आप बताते हैं कि सुन, अगर क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो क्षत्रिय के लिए स्वधर्म की सापेक्ष न कंपल्सरी होना चाहिए, क्षत्रिय समय जैसे वो देख धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई श्रेष्ठ बात नहीं। धर्म में युद्ध सामने आ जाए तो क्षत्रिय के लिए जैसे वेद पाठ ब्राह्मण के आज वेद पाठ करना है, ऐसे क्षत्रिय के धर्म में युद्ध में सामने लड़कर मरना चाहिए। एक बात याद आ गई, ये जो कोई मरता है तो मकान से बाहर गए हो भाई, अब जब बाहर आया तो मकान से बाहर गए, अब भर दे दो नीचे उतार दो। ये क्या बात थी, पुराने जमाने में रीत थी कि पहला पढ़े तो उसे गृहस्थाश्रम करे, फिर वानप्रस्थ आश्रम, तो वानप्रस्थ में जंगल में चला जाए, फिर सन्यासी हो जाए। तो मरे से जैसे पहले पहले संसार से निकल जाने से घर से बाहर निकल जाना चाहिए, ये बात बताइए। चाहे तो साधु संन्यासी और भजन करे और चाहे तपस्या करके मर जाए, पर क्षत्रिय के लिए तो घर में रहकर मरना ठीक नहीं है, कहा तो जाकर तपस्या भजन करे और कहा युद्ध के बीच में सामने आ जाए। बस युद्ध के बीच में सामने जो जूझ करके मरता है, मरा जूझना वो सिर कट जाए भाई तो भी आगे कबंध कबंध होता है कबंध। अपने क्या कह रहे थे वो सर कटने के बाद जूझता है ना झुंझार, तो वो झुंझार हो जाए तो ऐसे दृढ़ चाहिए जोर से। दो आदमियों को अप्सराएं भरती है, स्वर्ग की अप्सराएं चाहती है, एक के द्वावे तो पुरुषो लोके सूर्य मंडल भेद लो, सूर्य मंडल भेद करके परिप्राण योग युक्त योग परिप्राण सन्यासी और रणेता विमुखो हता, सन्यासी जिस पद को प्राप्त होते हैं रण के सर्व के जूझ कर मरता है, पेट नहीं दिखाता है, वो भी अवसराएं बढ़ती है, वो ऊंचे लोग हो जाता है। तो ये घर में शिशक शिशक मरना मिलकर काम नहीं है, चाहे तो भजन ध्यान करेंगे उसमें अपना शरीर छोड़े, जब क्षत्रिय है तो युद्ध में अपना प्राण दे दे, तो इनके ऐसा करना चाहिए। इस वास्ते घर से बाहर लोग तो मर रहा है, बाहर निकल बाहर बाहर नीचे नीचे ये मतलब है। तो ये घर में मरना अच्छा नहीं है, भजन ध्यान करके मरे और चाहे अपने क्षत्रिय तो युद्ध करके मरे। और देखिए महाराज, इस युद्ध के समान कोई कल्याण का साधन है नहीं, और वो भी यदि आप साफ आया, हम युद्ध करना चाहते नहीं थे और उन्होंने युद्ध किया तो यदि स्वर्ग द्वार उपावृतम, स्वर्ग का खुला दरवाजा है ये युद्ध। वे क्षत्रिय बड़भागी है जिनको ऐसा युद्ध मिल जाए, क्यों हम युद्ध करना चाहते नहीं, और वे युद्ध करना चाहते हैं तो धर्म युद्ध अपने धर्म के लिए युद्ध करना ऐसा क्षत्रियों के लिए कहां मिलता है। सुनो के बाद और बता मैं, अगर इस धर्म में युद्ध को संग्रह वो नहीं करेगा तो धर्म का त्याग करके अपकीर्ति को प्राप्त होगा, पाप को प्राप्त होकर अकीर्ति चाबी उतारने कसी संत से बयान तेरी अविनाशी अपकीर्ति करेंगे, और संभावित पूजनीय आदरणीय उसकी अपकीर्ति मरण से भी बचाई होती है। और देख तू तो युद्ध नहीं करता है धर्म मान करके, और बड़े बड़े महर्षि है, भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, कृपाचार्य है, बड़े बड़े आदमी जिनके बीच में तू सम्मान को प्राप्त होगा, अर्जुन दो हाथ करेगा युद्ध में होगा तो ऐसे बहुमत भूत लाघव यात्री लुगरे कायर हो गया, अर्जुन कायरता के कारण से भाग गया ऐसा मानेंगे लोग, इस लघुता को प्राप्त हो जा रहे। और आवाज से और दुर्योधन आदि ऐसे जो दुर्योधन है, दुशासन है, शकुनी है, कोई आवाज की वादान बोली संधि तो भाई था तेरे शत्रु है न लड़ेंगे बात कहेंगे। अरे इंदिरा ये युद्ध कर सकता है, अर्जुन हमारे सामने टिक सकता है, ये कैसा है, ये तो नपुंसक जगह कुछ नहीं है, लड़कियों को नचाया है और गाना बजाना किया है, युद्ध में हो तो आवे सामने कैसे आवे, ऐसे तेरी निंदा सामर्थ्य करके निंदा करेंगे तो मन से भी तेरे दुख होगा, फिर सह नहीं सकेगा, ऐसा कार्य लोग बचाएंगे और युद्ध करेगा हतो वह प्राप्त स्वर्ग, अगर युद्ध करेगा तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, मर जाएगा तो जीत वा मोक्ष मिल, जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा। उभय हाथ मुद मोतिक मोहरे दोनों हाथों में लड्डू है, मर जाए तो स्वर्ग जाएगा, जीत जाएगा तो पृथ्वी मिलेगी, ऐसे उत्तीस बांधता युद्ध आएगा, युद्ध के लिए निश्चय रख रहा होगा युद्ध कर कि महाराज पाप लगेगा युद्ध करने में, हत्या होगी, दोनों कुटुंब मरेगा, कहते हो सुख दुख समझ लगे पाप लगने का ये विषय नहीं है कि युद्ध छोड़ना सब्जी के लिए पाप लगता है, अब बड़ी मुश्किल होगी, युद्ध करे तो कुटुंब की हत्या में पाप लगे, युद्ध न करे तो क्षत्रिय धर्म से चित्त से पसंद तो पाप लगे, अब दोनों जगह अब मैं क्या करूँ, बताऊं दे पाप पे बचने का ये काम नहीं है कि युद्ध न करना, ये पाप से बचने का उपाय नहीं है, तो महाराज सुख दुख है समय कृत्वा लाभ है लाभ हो जय और पराजय हानि और लाभ और सुख और दुख इनको समान, न सुख में राजी होना न दुख में घबराना है, लाभ में राजी होना न अलाभ में हानि होनी है, जय पराजय में राजी पराजय नहीं होना है, ऐसा करके युद्ध करेगा पाप नहीं लगेगा, पाप लगने के बाद तो राजी नाराजी राजी नाराजी कभी खुशी कभी दुखी इसमें पाप लगता है, ये समान समझे युद्ध करो फिर को पाप नहीं लगेगा, ऐसा तेवीता सांख्य, ये सांख्य में तेरों बात कह दी कौन सी 11 से 30 तक वो और ये 8 श्लोकों में कह दी छात्र धर्म की बात, ऐसे तो मेरे को सुना काम बताओ बुद्धा युग तो कर्म बंधन प्रायश्री, जिस बुद्धि से युग तो कर्म बंधनों का त्याग करेगा वो तेरे को बात बताऊ कर्म बंधनों का त्याग हो जाएगा, ये कर्म कैसा है कर्म योग, अब कर्म योग का उपदेश देने वाले भगवान आरंभ करते हैं, इसमें अभी कर्म का नाश नहीं होता, मानो आरंभ कर दिया कर्म योग का भजन स्मरण का आरंभ, निष्काम भाव से दुनिया के हित के लिए युद्ध करना, अर्जुन है वो युद्ध अपने लिए नहीं करता है, पांडवों ने युद्ध किया है तो कैसे किया है थोड़ी सी बात बता रहे, ब्रजव्यास महाराज ने पांडवों से आकर कहा कि युधिष्ठिर तुम्हारे को लेकर के युद्ध होगा, इसमें क्षत्रियों का बड़ा भारी संहार हो जाएगा और तू निमित्त बनेगा युद्ध में, तो युधिष्ठिर महाराज ने विचार किया मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, मैं युद्ध काम करूंगा ही नहीं, युद्ध फिर युद्ध कैसे हो जाएगा, मेरे निमित्त से क्यों मारे जाएंगे इसमें, तो इसने विचार किया युद्ध नहीं करूंगा, परंतु बात क्या हुई कि वो उपलब्ध स्थान वहां विराट नगर में उसमें विचार किया पांडवों ने क्या करना चाहिए, तो फिर एक पहले ब्राह्मण को भेजा कि आप संधि कर लो, जो कुछ देना वो दे दो हमारे को, नहीं कर दो संधि करो युद्ध मत करो, उसको साफ दुर्योधन ने कह दिया कि हम नहीं देंगे, तो कृष्ण भगवान गए कि मैं जाता हूं संधि हो जाए, कृष्ण भगवान गए वहां से, कृष्ण भगवान ने वहां पूछा बोलो भाई क्या कर रहे हैं, जिस महाराज ने कहा महाराज युद्ध नहीं हो ऐसे कर, युद्ध किसी तरह से नहीं हो, युद्ध में बड़ा नुकसान होगा, आदमी मारे जाएंगे संपत्ति नष्ट हो जाएगी, कोई फायदा नहीं ना उनके फायदा ना हमारे फायदा, युद्ध न करने में फायदा, जिस महाराज ने कह दिया अर्जुन ने नकुल सहदेव ने कह दिया एक बार भीमसेन ने कह दिया कि युद्ध नहीं होते, वैसी बात है भगवान कह रहे भीमसेन तू ही युद्ध नहीं कर, नहीं नहीं महाराज वो बात नहीं है, अब मेरी बात सुनो भीमसेन युद्ध करेगा उसे कोई नहीं करेगा, तो मैं तो युद्ध करूंगा, और वे खेलते पासा खेलते हैं और जुआ खेलते हैं। अब क्या कि दान पान में के जाए बाणों को तो पासा चलेगा और बाजी जिंदगी लगेगी, जन्म मरना ये लगेगी फांस ये बाजी और पासा होगा बाणों का। इस तरह से करूंगा मैं, जैसे कहा मैं जैसे करूंगा। अच्छा ठीक है, द्रौपदी जी के पास गए, बोल द्रौपदी तू क्या कहती है, युद्ध करना चाहेंगे जो बात हो। धुकराज देवी महाराज शक्ति जाग उठी एकदम कि महाराज आप संधि का प्रश्न बोल जा रहा हूं, जिन दुष्टों ने मेरे को सभा में घसीटा और अपमान किया और साड़ी उतार नगद करना चाहा और दुर्योधन के मेरी जान पर यहाँ आ तू बैठ ऐसा कहा और ये केस मेरे खेचे गए, वे केस आज तक खुले हैं, ये दुष्ट नहीं मरेंगे तो केस बंद होंगे नहीं। जाओ भले कुरुराज पे धारी दूत वर वेश पैमान भूलन जाइए, द्रौपदी केस हो द्रौपदी केस युद्ध करने आप जाओ, दूत बन गए संधि का प्रति लागे शर्म दिया आपको लज्जा दिला रही है मेरी ऐसी दुर्दशा करी और उन दुष्टों के साथ आप संधि करते हो, ऐसे रो पड़ी एकदम। द्रौपदी का कृष्ण भगवान साथ बहुत प्रेम था, बड़ी भक्त थी उत्तम रहेगी तो भगवान जी बड़ी इस करी एकदम रोने लग गई। आपको शर्म आनी चाहिए संधि का प्रस्ताव लेकर आप जा रहे हो, रो तो भगवान ने कहा द्रौपदी रो मत, मरेंगे सब युद्ध भी होगा सब मारे जाएंगे पर पांडवों पर दोष आएगा युद्ध किया तो पांडव निर्दोष हो जाए इस वास में जाता हूँ, तू घबरावत ये मरेंगे। उसने कहा भगवान भविष्य की बात कहनी पड़ी जोर से, द्रौपदी रो रही इस वास में देख हिमालय पर्वत चलायमान हो जाए, ये पृथ्वी के सौ टुकड़े हो जाए फले से दसधा फले मेदनी सतधा फले सौ टुकड़े हो जाए पृथ्वी के चले से हिमवान भी ये सब हो सकेगा पर दुष्टों का विनाश होगा ही उनको संदेह मत कर सब मर जाएंगे कोई जरूर रहने वाला है नहीं। वो घबरा मत इस द्रोह आश्वासन दिया और मैं जाता हूँ पांडवों पर कलंक न आवे, सब तरह से पांडव राजी थे परंतु दुष्टों ने नहीं माना इस वजह से मरेंगे तुम घबरा मत। तो जो चुप हुई तो युद्ध के लिए गए, अब युद्ध करने का विचार नहीं थे युधिष्ठिर का और भगवान की संधि कराने के लिए, संधि कराने के लिए गए तो विशिष्ट बात हुई। भगवान जा रहे थे तो मार्ग में ऋषि मुनि जा रहे थे हस्तिनापुर, जंगल में तपस्या छोड़ करके ऋषि मुनि जा रहे थे हस्तिनापुर के, भगवान रथ पर चढ़े हुए जा रहे थे, नीचे उतरे नमस्कार किया, मतलब आप कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं महाराज कौरव सभा में, आप व्याख्यान देंगे ना वो हम सुनेंगे आपका अभी व्याख्यान में युद्ध की बात होगी आत्मना तो विचार थोड़ा एक विवेक विचार है ऐसे कहा वो सुने के स्वाद जा रहे हैं भगवान पर से ठीक है तो मैं चलो आप पधारो हम वहां आ रहे हैं। भगवान गए वहां गए तो सलाह करी भगवान जाने लगे व्याख्यान बहुत बढ़िया जगह। कौरवा ने कहा कि कृष्ण आता है इस कृष्ण का आदर करो, ये अगर राजी हो जाएगा तो अपन बिना युद्ध किए ये अपन राजी रह जाएगा, पांडव युद्ध करेंगे नहीं भगवान मना करने से अपना ठीक हो जाए आदर करो। तो दुशासन का महल था सबसे सुंदर बढ़िया, तो दुशासन के महल में तो उन्होंने डेरा दो और उनका आदर करो, इतनी इतनी चीजें भेंट करो जिससे कृष्ण राजी हो जाए। पितर जी ने कहा कि तुम राज्य का राज अर्पण कर दो तो ये राजी होने वाला नहीं है और पांडवों को दे दो तो राजी हो जाएगा, इसके लड़ने से ये राजी नहीं होगा। फिर बहुत सत्कार किया सब सबका, उसने कहा कैसे आया कि मैं दूत बनकर आया हूँ संधि का प्रस्ताव लेकर, ये संधि का नहीं होगा। तो भगवान वाले कहने लगे खड़े होकर के व्याख्या करने लगे तो दुर्योधन दुशासन शकुनी और कर्ण ये चार जने अकेले जाकर विचार करने लगे कि ये पांडव कूदते है ना, इनके पास बल कृष्ण का ही है और कृष्ण आज गया, आज आपने कब्जे में आ गया है, इसको पकड़ करके कैद में डाल दो, सब काम ठीक हो जाए, चुप हो जाएगा, उनको चिंता लगी नहीं, वे नहीं करेंगे, सब काम ठीक हो जाए। ये उनको सलाह कर रहे थे। तो महाराज क्षत्रिय लोग गुपिया पुरुष रखते है ना, और सीआईडी विभाग से पास पता लगा कि जो भगवान को कैद करने को तैयार हो रहे हैं, और भगवान खड़े ही बोले, अरे वो दुर्शासन और दुर्योधन मेरे को कैद करना चाहते है, आओ मेरे सामने कौन कैद करने वाला। ऐसी बात सुनी तो अपने तो एकांत में सलाह, तो बात तो फूट गई, भगवान ने जान लिया। जन आए बारे बारे ये लगाया भगवान ने विराट को, मूर्छित होकर गिर गए। बड़ा विराट को दिखाई बिखरा, तुम जानते कि अकेला है कि बांध रहे, बांधो किसको बांधो उसे, ऐसा विराट रूप देखा, विराट रूप दिखाए थे। भीष्म और द्रोण तो स्तुति करने लगे, दुर्योधन के साथ मूर्छा थी, मूर्छा पकड़ी गई, जितने विश्वजी से रूप से, तो भगवान से पहुंचकर सात्विकी यादव था, वो यादव सेना का अधिपति याद सात्विकी और विदुर जी इनको हाथ पकड़ करके भगवान बाहर चले गए। फिर विदुर जी के घर गए, दुर्योधन ने बहुत कहा कि महाराज अतिथि सत्कार करो, हमारे यहाँ भोजन भोजन तुम्हारा नहीं करेंगे, मैं संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूँ, तुम्हारे यहाँ भोजन कर दूंगा तो तुम दे दो घूस, मैं घूस नहीं खाता, आज तुम्हारे भोजन करूंगा नहीं मैं, क्योंकि संधि का प्रस्ताव रहेगा, एक पक्ष में कैसे हो जाऊंगा मैं, इस वक्त भोजन भोजन करूंगा नहीं, तो महाराज आप हमारे संबंधी है उस संबंधी से करो। क्या नहीं दो बज गए, दो प्रकार भोजन होता है, एक वहां भूखा मरता हो तो कहीं नहीं खाना पड़ता है, एक जहाँ प्रेम हो पेट में भूख नहीं तो कुछ खाना ही पड़ता है, तो प्रेम तो तेरे नहीं है और भूख मेरे नहीं है, चल मैं नहीं खा रहा तेरे, भगवान चल दी भोजन दो बज कही है राजा विपत पड़ेगा, पीता पीत तेरे विपत हमारे, यही उल्टी जीता उस जान के बिजुर्ग भोजन करते हो। फिर विदुर जी गए तो विदुरानी का प्रेम जाकर सुनी हुई है बस, इसलिए संधि का प्रस्ताव माना नहीं, तो आकर कह दिया भाई वो युद्ध किए बिना वो तो मानेंगे नहीं, ऐसी बात सुनी। फिर वे गया भगवान कुंती से मिलने के लिए, पास जाते हुए बुआ था नी कुंती, तो उसके कुंती बुआ से मिलने गए, बुआ जी प्रणाम किया, बोलो माँ जी कहते क्या बात है, इन्होंने ऐसा ऐसा कहा है और ये मेरे को पकड़ना चाहे कैद करना चाहते थे, कुंती हुई तेज हमारे कन्हैया को कैद करना चाहते है, तुम जिसको कैद जिसो को मरोगे अब जिद करोगे, तो माँ का वचन टालते नहीं थे, इसी से महाराज माँ की बात नहीं टालते, पांच पति हो गए माँ के मुख से, तो कुंती माता ने कह दिया जाकर ऐसे धनी नित्य दुख तो रोक हो जरा यदर्शन क्षत्रिय सूते प्रश्न काल हो माँ बता ऐसे धनंजय बाजी का और अर्जुन से कहना और नित्य दुख तो रुक हो जरा नित्य कमर कैसे तैयार रहने वाला भीमसेन से कह देना जिस दिन के लिए वीर क्षत्रानी पुत्र पैदा करती है बेटा वो तुम्हारा दिन आ गया है अब काहे बचोड़ा। ये कृष्ण भगवान के साथ संदेश का आह्वान है, वो संदेश जाकर कह दिया तो जिस गरीब अब युद्ध करना ही पड़ेगा, अब माँ का हुक्म हो गया। तो माँ ने क्यों हुक्म दिया युद्ध करने के लिए, माँ को दो बात नहीं सही गई, एक तो द्रौपदी का सभा में अपमान किया वो बहुत खटकी माता, अरे आपस में भाई भाई लड़ो राज्य करो, मेरी कुल बधू मेरी पुत्र बधू द्रौपदी जैसी सती उसका सभा में इस तरह से अपमान करना, वस्त्रहीन करना चाहना, तो इन दुष्टों का नाश ही होना चाहिए, और मेरे कन्हैया को प्यारे को पाने के कैद करेंगे, ये दुष्ट मानने का ये दो बातें नहीं सही कुंती माता से। इस बार कुंती माता ने कहा अब जाओ कहो ये दुष्ट करो, जब कृष्ण जा गया सब समाचार ऐसी बात ही है, हमने कहा यहाँ तक कृष्ण भगवान ने कह दिया कि पांच गांव दे दो, पांच पांडवों को पांच गांव दे दो, शर्त तो ये हुई थी कि 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, 13 वर्ष के बाद आधा राज्य पांडवों का आधा राज्य हमारा, ये रहेगा, परंतु ये पढ़ गया हम नहीं देंगे। भगवान ने कहा आजाद नहीं दो तो कम से कम 5 गांव तो दे दो, क्षत्रिय है अपना एक एक गांव रखेगा। दुर्योधन ने कहा यावत ही तीक्ष्ण सूचिया विद्य अग्रण के सब कैसे हम सुनो, सुई वाली सुई तीखी से तीखी सुई उसकी नोक टिके इतनी जमीन भी बिना युद्ध के मैं नहीं दूंगा, जाओ कर दो जो कुछ बनाओ। दुर्योधन साहब कह दिए तो दुर्योधन की समाज से भी कह दी माता कुंती की बात भी कह दी, सब जोश आ गए सोच अब ये दुष्टों को आएंगे, ऐसा तो दुर्योधन ने युद्ध किया नहीं तो युद्ध करने का विचार था नहीं। हम आपने गरीब से जैसे कैसे निर्वाह किया, 13 वर्ष यहाँ पर है, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, जो विराट के यहाँ पर रहे तो 13 वर्ष निकालेंगे, उम्र भी निकाल देंगे, उनका नाश क्यों करें। और माँ ने कह दिया, और माँ ने कह दिया दो दुखों से एक करना चाहते है, एक हमारी कुल द्रौपदी को सभा के बीच में इतना अपमान वे करते हैं, 3 दुष्टों का नाश होते है, अब ये दुष्ट जीने लायक नहीं है, ऐसा युद्ध का उपभोग हो गया, इस वास्ते युद्ध करने की बात हुई। अब आगाड़ी सांख्य योग का विषय क्या कर्मयोग का विषय इससे आगाड़ी कहेगा, अब इसलिए बात कहते हैं। अब दूसरी बात आपको सुना में जो प्रश्न आया है, नारायण 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 राम 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 नारायण 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 नारायण। प्रश्न आया है कि आप बार बार कहते हैं कि मुक्ति करो मुक्ति करो, कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए कल्याण हो जाए तत्वज्ञान हो जाए मुक्ति हो जाए, पर इधर मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान वो कहता आरतन धर्मन काम रुचि अरे गति हो निर्वाण जन्म जन्म रसी राम पद यह बरदानना। ये भस्ती महाराज ने प्रयागराज में त्रिवेणी से तीर्थराज से प्रार्थना की है, अर्थ में धर्म मैं धन नहीं चाहता धर्म भी नहीं चाहता कामना भी मेरी अर्धर्म काम उसमें और कथित से हूँ निर्वाण में मुक्ति भी नहीं चाहता, मैं तो जन्म जन्म भगवान के चरणों का प्रेम चाहता हूँ, यह वरदान है ना आन और वरदान नहीं। जिस जोड़ी में जाते जोड़ी जन्म कर्म नाम को अनुराग हूँ, बाली ने भी भगवान कृष्ण से यही कहा है मैं किसी जोड़ी में जाऊँ और हमारा आपके चरणों में प्रेम हो जाए हमारा राम राव को जो अनुराग हूँ हे परमात्मन मैं ऐसा हूँ। ये दिखने वाला सज्जन कहते हैं कि महाराज मेरा ऐसा विचार है कि मैं मुक्ति नहीं चाहता, मैं तो यही चाहता हूँ जिस जोड़े में जब आप में प्रेम हो जाए और आपके गीता भगवत गीता का प्रचार विश्व भर में कोने कोने में पहुंचा दूं, जगह जगह गीता का प्रचार, सब लोग मुक्त हो जाए कल्याण हो जाए अपना कल्याण करे और गीता के अनुसार जीवन बनावे, ऐसा गीता का प्रचार चाहता हूँ मैं मुक्ति नहीं चाहता हूँ, तो मुझे ये बारम्बार जन्म देना मैं स्वीकार है, तो ऐसी प्रार्थना ठीक है या नहीं, क्या बात है इनमें कौन सी बात ठीक है, ये एक भाई पूछता है। तो ये बात मैं बहुत बढ़िया मानता हूँ, जिनका ऐसा भाव है तो वो तो मुक्त हो गया। गोस्वामी जी ने भी लिखा है मुगत निराधरी भगत लुभाने, भगत होते हैं वो मुक्ति का आदर नहीं करते, मुक्ति नहीं लेकर भक्त भगवान की भक्ति करना चाहते है। जन्म जन्म रसी प्रणाम पर कई जन्म जाऊँ वहाँ भगवान के सदा में भक्ति हो, तो मैं ऐसा चाहता हूँ, गीता का प्रचार करना चाहता हूँ। तो कौन सी बात ठीक है, मुक्ति ठीक है बार बार जन्म ठीक है, ये प्रश्न है। तो भाई ऐसा जन्म चाहते हैं वो मुक्ति से बढ़ करके है। मुक्ति किसने, मुक्ति नाम छूटना दुख से, संताप से, जलन से, राग द्वेष से, हरक शोक से, दुनिया के जो थपेड़े होते हैं इनसे बचने का नाम मुक्ति है। जो परमात्मा से प्रेम चाहता है, परमात्मा गीता का प्रचार चाहता है, वो मुक्ति से ही अधिक है। सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सब भगवान में लग जाए, सब भगवान के प्यारे बन जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी का भी अकल्याण न हो, किसी को भी दुख न हो, सबके सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके घरों में मंगल ही मंगल हो रहा तो सारे सब सुखी हो, अरे इससे भी बढ़ करके सब भगवान के भक्त हो जाए। भगवान से प्रार्थना करते हे नाथ, सबका कल्याण कर दो, सबका उद्धार कर दो, सबका कल्याण। ऐसे एक भक्ति बात हमने सुनी है। एक भक्त था, उसने तपस्या की, भजन किया, भगवान प्रकट हुए कि भाई बोल क्या क्या चाहता है। तो भक्त बोला कि महाराज पहले वचन दो, आप क्या चाहता है तुम मांगते हो पहले वचन दो कि मैं जो तुम मांगे वो दूंगा। भगवान कह रहे वचन क्यों ले रहे, तुम मांग तो सही, जो मांगे मांगते ही मर जाए, उसे पहले वचन दो कि दूंगा ही। हुए कहते मैं कहता तुम मांग तो अच्छी बात है, आपकी मर्जी, तो संपूर्ण जीवों का कल्याण कर दो, ये बताऊंगी। कोई जीव बंधन में न रहे, जन्म मन में न जाए, संपूर्ण जीवों का कल्याण कर दो। भगवान बोले भाई सब जीव कल्याण चाहते नहीं, कहते चाहते तो वही मांग लेते, वे चाहते नहीं तो मैं मांगता हूँ, अगर वे कल्याण चाहते मैं क्यों फोड़ा देगा। वही करने में चाहते नहीं, इस बात कहता हूँ संपूर्ण जीवों को छुट्टी दो। तो ये बात तो कैसे हो गई, उनके बहुत पाप है, जीवों के बहुत कर्म है, उन्हें भोगना पड़ेगा, बहुत कर्म है, तो वह छुटकार कैसे हो। तो महाराज यूं कर दो कि वो कर्मों का फल सब दुनिया का मेरे को भोगा दो, अकेला जन्म जन्मांतर कल्पांतर मैं नरक में पड़ा रहूंगा, सबका पाप तो मैं भोगूंगा और कल्याण उनका हो जाए। कि भाई तू ऐसा भक्त है तो ऐसी भक्ति करने वालों को पाप कैसे भोगाऊ, ये बात जचती नहीं मेरे, तो माफ कर दो, चलो माफ कर दो, यूं कर दो। कि भाई ऐसे कैसे हो सकते, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, चाहे सो मांग कुछ कहना चाहिए, स्त्री पुत्र मांग ले, धन मांग ले, राज्य मांग ले, जीना मांग ले, स्वर्ग मांग ले, यूं कहना चाहिए। चाहे मर्जी आओ सो मांग, तो मर्जी आओ जैसे भाई मर्जी ऐसे मांगा मैंने वो दो। तो भगवान का भाई तू जीत गया मैं हार गया, तेरे सामने क्या कहूं महाराज, ये सुखी जीत तुम्हारा क्या फायदा, बताओ दुनिया को कल्याण मिले मेरी जीत से क्या फायदा। भगवान कहे भाई ऐसा नहीं, देख एक बात बताओ, हाँ महाराज आपका तुम्हारा कोई दर्शन करेगा, तुम्हारी कोई बात सुनेगा, तुम जहाँ जहाँ बिछड़ोगे वहां वहां जीवों का कल्याण हो जाएगा, जहाँ जाओगे तुम्हारी बात सुनेगा उनका कल्याण हो जाएगा। तो अच्छी बात है भाई, राव तेल पल्ले में लीजिए, कोई असली क्या करा। तो ऐसे भक्त होते हैं दुनिया को उद्धार चाहने वाले, उनके सामने भगवान कहते मैं हार गया, अब कर दू तेरे को। तो ये भगवान देव अच्छी बात, दर्ज तू चौको पर क्या है मेरी। तो ऐसा जिसके भाव है दुनिया के उद्धार करने का, ये भाव बहुत उत्तम, बड़ा श्रेष्ठ है। कहते मुक्ति, अरे मुक्ति तो कोई दर्शन से हो जाए, घूमे वहां से हो जाए, वो जहां जाओगे तेरे दर्शनों से कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो उनके चरणों की दूरी में पड़ रहा है। राम की माया है, अध्याय रामायण, अध्यात्म रामायण, उत्तरकांड पांचवा सरण उसके अंत में आता है। यस्य वते माम गुणं गुणात्परम् हिना कदा वा यदि वा गुणात्मकम् सोऽहं स्वपादान् सिसरेणुवि स्पृशन् पुनाति लोकस्सृजयम् यथा रविः। यस्य वते माम गुणं गुणात्परम्, जो गुणों से परे अगुण निर्गुण परमात्मा का सेवन करता है, हिना कदा वा यदि वा, अथवा मेरे सगुण रूप का ध्यान करता है, सगुण के शरणों को ध्यान करता है। माम ये अगुणं गुणात्परम हृदय कदा वा यदि वा गुणात्म सोहम, निर्गुण उपासना करते वो भी मेरा स्वरूप है और सगुण उपासना वो भी मेरा स्वरूप है, साक्षात मैं हूं जैसा ही है। वो घूमता है संसार में तो अपने चरणों की रज्जु से दुनिया को पवित्र करता है, सबको। जैसे सूर्य जहां जाता है वहां प्रकाश हो जाता है, जहां से चला जाता है वहां अंधेर हो जाता है, तो ऐसा भक्त जहां जाता है स्वपादान से रेणु भी स्पृशन पुनः त्रिलोक त्रिशयम, त्रिलोक को पवित्र करता है ऐसा भक्त। तो जिसके भाव ऐसे विषय में उद्धार किए हैं उसके चरणों की रज मुक्ति है। और भगवान ने इससे भी बढ़कर बात बताई है कि जो कुछ भी नहीं चाहते, कोई मांगने देने पर भी नहीं रहते और मेरे भजन में रात में लगे रहते, ऐसे जो निष्किंचन भक्त है, निष्काम भक्त है, उनके पीछे पीछे मैं घूमता हूँ। वो अगर चलता पीछे पीछे मैं चलता हूँ। महाराज क्यों चलते हैं? उनके चरणों की रज्जी उड़ करके मेरे लग जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। बड़ी आश्चर्य की बात है, भगवान भी अपवित्र होते हैं। जैसे भगत की चरणों की रज्जी से मैं पवित्र हो जाऊं, इस वास्ते उनके पीछे पीछे घूमता हूं। बड़ी आश्चर्य, भगवान अपवित्र होते हैं, पवित्र हो जाए भगत। अरे भगवान तो न पवित्र है न अपवित्र है, और पवित्र दोनों ही है, दोनों से ऊंचे हैं भगवान। तो पवित्र पूजे यतन रेणु अनुप्रजा में हम नित्यम पूजे यतन रेणु भी, उनकी अंग रेणु से पवित्र हो जाते हूँ मैं, खिलाड़ घूमता हूँ। तो क्या बात है कि ये दुनिया सब भगवान के रूप है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसोई फल हो, ये सब ईश्वर रूप है, भगवान का स्वरूप है। तो इनमें पापी भी है पुण्य आत्मा भी है, तो भगवान के स्वरूप में है पापी भी है, तो वे पापी पवित्र हो जा, क्यों मेरे शरीर में मैं लू रज्जी, उस रज्जी से हो जा पवित्र, तो अपवित्र तो पवित्र तो पवित्र है ही, अपवित्र भी पवित्र हो जाए, ऐसे वे भगत होते हैं। भगवान कहते हैं मैं ऋणी हो जाता हूँ, ऐसे भक्तों का मैं ऋणी हो जाता हूँ। एक जगह महादेव 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 से योग बदेत, तीन बार कहते महादेव 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 से योग बदेत, कहता है एक ना मुक्ति वापन होती, एक नाम से तो मुक्ति हो जाती है। इस बार भी हम शंभु ऋणी हो गए, दो से ऋणी हो गए, मेरे ऋण है अभी कह दो। भगवान ने किसी ने कहा है, कहते हैं कृष्णा, द्रौपदी जी के नाम कृष्णा भी है, कृष्णा श्याम वर्ण था इसका, इस वास के नाम कृष्णा भी है द्रौपदी का। तो कृष्णा कहती है, कृष्णा के समय भगवान कहते हैं हृदय में तो प्रवृत्तम में हृदय नाम से द्रौपदी, तेरा मेरे सिर पर बड़ा भारी ऋण है, हृदय से उतर जाते हैं, मैं दब गया हूँ सिर पर, छाती पर मेरे भार है तेरे ऋण का। महाराज क्या ऋण हुआ वो? यद कृष्ण चुक्रोश है कृष्ण माम दूर वर्ते न, गोविंद द्वारका वासन कृष्ण गोपी जन प्रिय, जब तीर खेचने लगे उस समय द्रौपदी बोली है हे कृष्ण हे द्वारका वासिन, द्वारका रहने वाले कृष्ण गोपी जी लोग प्यारे, कौरवारण मग्सवा और अरण मग्नामं किन जाना सी केशवा, ये कौरव समुद्र में डूब रही हूँ क्या आपको पता नहीं है ये मेरे कैसा कर रहे हैं, कितना अपमान किया है, जैसे मरे हुए कुत्तों को ठहरे इस तरह से द्रौपदी को सभा में गिराया और केसों से खेचा और घसीरा जैसे मरे कुत्ते खेचे, इतना मेरा अपमान कर रहे हैं क्या आपको पता नहीं है, ये जो तुमने पुकार की उस समय वो पुकार मेरा ऋण है तेरे, मेरे पर ऋण अभी तक हृदय से उतरता नहीं है, ऐसे मेरे को पुकार आज है, तो भगवान को सत्य हृदय से पुकारते हैं तो भगवान ऋण हो जाते हैं, एक मेरा सहारा और कोई सहारा नहीं, पहले हाथों से पकड़ी साड़ी दांतों से पकड़ी पर फिर हे कृष्ण हे कृष्ण छोड़ दी सर उठा, नख हुआ था नहीं, नख भी एक भी हुआ था नहीं हुआ, 10,000 गज बल घटियो, अरे घटियो ने 10 गज चीज, 10,000 हाथियों का बल रखता था दुशासन, दुर्योधन कह रहे इसको नगर कर दो, बस उतारो कपड़ा उतारो, ये क्या बात थी, पांडवों ने जब एक यज्ञ किया उस यज्ञ में बहुत दूर दूर से लोग आए और चारों भाइयों ने चारों दिशाओं को जीत करके और धन लाकर तैयार, सब राजाओं को जीत करके अपना राजस्व यज्ञ ऐसा हुआ, उसमें मर्दानों ने एक सभा दी थी, कांडो बंदा के समय मर्देव उनको बचाया था, मर्दानों ने एक सभा दी, एक भवन दिया था सभा भवन, उस सभा भवन में ऐसी विचित्रता थी कि पांडवों के साथ में कोई देश रखे तो उल्टा दिखता था, दरगाह जी की जगह तो सफेद दीवार और दीवार की जगह दिखता दरवाजा, और चले आगे तो जल है वहां तो पानी पानी दिखता, ऐसा पानी दिखता है वहां जमीन ऐसा उल्टा दिखता था, तो दुर्योधन को बुरा दुर्योधन गया, राजसभा लोगी कई देशों के बड़े बड़े राजा लोग भेंट देकर आए थे, जहाँ भगवान ठाट बाट बड़ा विचित्र, उस ठाट बाट को देखने दुर्योधन भी आया, दुर्योधन को निमंत्रण दिया बुलाया, तो आया तो पहले तुम्हारा भीत की लगी जोर से देखे दरवाजा है, तो दरबार में कहा महाराज महाराज कुमार इधर पधारिए आप, ऐसे ले गया ये दरवाजा है, में गया था मार पानी देखा तो अच्छा बड़े अंगा पैर नहीं उसको ऊंचा कर दिया, अरे आगे जान जलाया छोड़ दिया, अरे डूबा जल में द्रौपदी बैठी थी ऊंची, नीचे दादों में शोभा थी, चार सौ गिलेरी थी उसमें रानियां बैठी थी, तो द्रौपदी बैठी द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी ऐसी और अंध पिता के अंध से भाटो कटवी में भीम भारत कुल गार भयो आई बिबसासी, आंधा के तो आंधा ही मैं बाप ही अंधा बेटे ही अंधा, दुर्योधन को बहुत बुरा लगा, पहले तो बेटी लगी पानी में डूब गया और फिर हंसी द्रोह जी और अंधा अंधा ही मैं चुभ गई, उस दिन का बदला लेना चाहा दुर्योधन ने कि अंधों के अंधे तो अंधे तो राजा अंधी सभा है, लाज किस बात की, लाज तो आंखों की होती है, कर दो नगन किसको, इस बात से अंधे हमसे सब अंधे है, अंधे ही राजा है, अंधे ही प्रजा है, अंधे ही सभा है, लाज किस बात की है, लाज तो आंखों की होती है, तो ये दुर्योधन का विचार था, इतना अपमान किया कृष्ण को पुकारा, द्रौपदी जोते रही जदुनाथ उबारो दे रही, बैठी पुकारू मैं खड़ी पुकारू सिंह झपट मानू गाय गही, बड़ो चीर घटो बल दुष्ट न को सब सूर प्रगट सब लाज राख रही, ये बात है कि द्रौपदी जैसे देशों और चारों सब देखे भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य है, बड़े बूढ़े बूढ़े दादा गुरुजन ऐसे बैठे हैं और कोई नहीं बोलता है, सब चुप हो गए। द्रौपदी का द्रौपदी को भरोसा पे कि महाराज मेरी रक्षा करेंगे। द्रौपदी उस समय में स्त्री धर्म में थी तो दुशासन के बड़ा दूत को जाओ नौकर को कहो द्रौपदी आ जाए। युवा खेले उस युवा में दुर्योधन ये बड़ा युधिष्ठिर हार गए, फिर भाइयों को लेकर भाइयों को भी हार गए, सब भाई राज्य को हार गए, संपत्ति हार गए, सब हार गए, भाइयों को भी हार गए। जब जिस महाराज ने खुद अपने को लगा दिया, अपने को भी हार गए, तो अब क्या लगाओ, कुछ है नहीं, तो है नहीं द्रौपदी है तुम्हारी उसको लगाओ। द्रौपदी को भी लगा दिया, वो भी हार गई। तब उसका जाओ द्रौपदी को लाओ, वो पांडवों की स्त्री नहीं रही है, वो हमारी हो गई है, उसको लाओ पकड़ो सभा के बीच में। तो नौकर को कहा तुम बुला लाओ द्रौपदी को। नौकर गया वहां, कैसा आप सभा में बता लो कि मैं सभा में नहीं आऊंगी, मेरी जरूरत नहीं है और अब मैं बाहर जाने वाली नहीं हूँ, मैं जा नहीं सकती। पिछले साल की अर्षा तो वो तो नहीं आती, दुशासन को लाओ पकड़ करके, दासी नहीं आ सकती, पकड़ कर लाओ। तो उसने पकड़ा तो केस खींचा, फिर भागने लगी तो केस खींचा और बाँह पकड़ करके ले आया। तो द्रौपदी ने कहा कि देखो, दुर्योधन ने कहा तुम हारी गई हो, हमारी हो गई हो, ये पांचों पांडव बैठे थे कुछ नीचे दाड़ किए चुपचाप, सब हार गए हैं, सब तुम्हारे को भी हार गए हैं, वो तुम अब पांडवों के स्त्री नहीं हो, तुम दासी हो हमारी मर्जी से, मैं और मेरी जान पर यहाँ आकर बैठो, मैं बैठो पास में ठोका। इतना कर रहा बोला दुर्योधन साड़ी कर दो, इसको नगर कर दो। सभा को कोई नहीं बोला, बड़े बड़े सुनने वाले सब रहे। आज कोई सभा में किसी स्त्री को इस तरह से तंग करे तो आजकल के लोगों का खून उबड़ने लग जाए। बोला करे अबला को तंग करते हो तो मैं वो सभा द्रोण और भीष्म और बड़े बड़े महर्षि बैठे, कोई नहीं बोला। तो उस समय वो पुकारी भगवान कृष्ण को, तो कृष्ण पुकारी तो महाराज नख भी खाली नहीं हुआ, खींचता गया साड़ियां साड़ियां ढेर लग गया, तरह तरह की साड़ियां ढेर लग गया। द्रौपदी ऐसी ऐसी कि नारी है कि सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है, क्या है ये कोई साड़ी कोट बंधी हुई साड़ियों ही साड़ियों कोरी है कि स्त्री है, साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच सारी है, क्या है चीज। साड़ियां उधर से ही चली गई, थक गया हमारा दस हजार गलबल नारी को कुछ नहीं मिल रहा है, भगवान जिसकी कृपा कर दे उसे क्या पता है। ऐसी बात है तो बड़े जोर से अपमान किया। तो वो बदलाना चाहे वो जो हंसी है ना द्रौपदी, उस हंसी की बात कड़वी बड़ी इस बात को लेकर के ये बात हुई सभी। अब भी वे पांडव कौरव कभी संधि करना नहीं चाहते, बड़े से उसका चमत्कार देख लिए, बंद में भेज कर देख लिया, सब से देखा, परंतु दुर्योधन आदि की आंख नहीं खुली। दुष्ट होते हैं उनकी आंख नहीं खुलती, बड़ा भारी अपमान किया। तो कृष्ण भगवान ने कहा गए द्रौपदी तू उस समय में आर सो पुकार रहा है तेरा ऋण मेरे सिर पर, ऋण में तो प्रवृत्ति में हृदय ना हृदय से दूर हो जाते हैं, मेरे को एक अनन्य भाव से तेरे बुझा, सिवाय मेरे और किसी का इशारा नहीं है, ऐसा तेने कहा अनन्य भाव से। तो अनन्य स्थिति हो, अनन्य होकर भगवान भक्त हो जाए तो भगवान उसके दास हो जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तसे बजाने में, जैसे भगत शरण होता है भगवान के, भगवान वैसे ही उसके हो जाते हैं। वो कहता है महाराज मेरे और कोई एक आप ही हो, भगवान कहते मेरे तू ही है और कोई नहीं है मेरा है। इस भगवान है, ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाओ और उसे याद करो, देखो कितनी मौज है, कितना आनंद है। अब समय ज्यादा हो गया। नारायण 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 नारायण।